शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 20। दाविद को योनातन की सुरक्षा। दाविद रामा के नायोत से भी भागे। उन्होंने योनातन के पास आकर उनसे पूछा, क्या किया है मैंने, बताओ। कहाँ हुई है मुझसे भूल? क्या अपराध किया है मैंने तुम्हारे पिता का, जो वह आज मेरे प्राणों के प्यासे हो गए हैं? असंभव, योनातन ने उनसे कहा, यह हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी हत्या हो। मेरे पिता साधारण असाधारण कोई भी काम बिना मुझे बताए करते ही नहीं। भला इस विषय को वे मुझसे क्यों छिपाएंगे? नहीं, यह असंभव है। दाविद ने शपथ लेकर कहा, तुम्हारे पिता को तुम्हारे और मेरे गहरे संबंधों का पूर्ण पता है। तब उन्होंने यह सही समझा है कि इस विषय में तुम्हें कुछ भी जानकारी ना हो, अन्यथा तुम दुखी विचलित हो जाओगे। जीवंत यहावे तथा तुम्हारी शपथ, मेरी मृत्यु मुझसे सिर्फ एक पग ही दूर है। योनातन ने इस पर दाविद से पूछा, तो बताओ अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तब दाविद ने योनातन को यह सुझाव दिया, कल नवचंद्र उत्सव है, रीति के अनुसार मेरा राजा के भोज में उपस्थित रहना अपेक्षित है। तुम्हें मुझे अवकाश देना होगा कि मैं आज से तीसरे दिन की शाम तक मैदान में जाकर छिप जाऊं। यदि तुम्हारे पिता को मेरी अनुपस्थिति का पता हो जाए तो तुम उनसे कहो, दाविद ने एक बहुत ही जरूरी काम के लिए अपने गृह नगर बेथलेम जाने की छुट्टी ली है। वहां उसके पूरे परिवार का बलि चढ़ाने का उत्सव है। यदि तुम्हारे पिता कहे, ठीक है कोई बात नहीं, तब इसका मतलब होगा कि तुम्हारा सेवक सुरक्षित है। मगर यदि यह सुनते ही वह क्रोध हो जाए तो यह समझ लेना कि उन्होंने मेरा बुरा करने का निश्चय कर लिया है। तब तुम अपने सेवक के प्रति कृपालु रहना, क्योंकि तुमने ही यहावे के सामने अपने सेवक के साथ वाचा बांधी है। मगर यदि तुम्हारी दृष्टि में मैंने कोई अपराध किया है, तुम स्वयं मेरे प्राण ले लो। क्या आवश्यकता है इसमें तुम्हारे पिता को शामिल करने की? कभी नहीं, योनातन ने कहा, यदि मुझे लेश मात्र भी यह पता होता कि मेरा पिता तुम्हारा बुरा करने के लिए ठान चुके हैं, क्या मैं तुम्हें ना बताता? तब दाविद ने योनातन से कहा, अब बताओ तुम्हारे पिता द्वारा दिए गए प्रतिकूल उत्तर के विषय में कौन मुझे सूचित करेगा? योनातन ने उनसे कहा, आओ बाहर मैदान में चले। जब वे दोनों मैदान में पहुंच गए, योनातन ने दाविद से कहा, यहावे इसराइल के परमेश्वर मेरे गवाह है, कल या परसों लगभग इसी समय जब मैं अपने पिता के सामने यह विषय छोड़ूंगा, यदि दाविद के विषय में उनकी मंशा अच्छी दिखाई दे तो क्या मैं तुम्हें इसकी सूचना ना दूंगा? मगर यदि मेरे पिता का संतोष तुम्हारी बुराई में ही है, तब यहावे यह सब तथा इससे भी अधिक योनातन के साथ करे यदि मैं तुम्हें इसके विषय में सूचित ना करूं और तुम्हें इसका समाचार ना दूं कि तुम यहां से सुरक्षा में विदा हो सको। यहावे की उपस्थिति तुम्हारे साथ इसी प्रकार बनी रहे जिस प्रकार मेरे पिता के साथ बनी रही थी। जब तक मैं जीवित रहूं, मुझ पर यहावे का अपार प्रेम प्रकट करते रहना। मगर यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे परिवार के प्रति अपने अपार प्रेम को कभी ना भुलाना। हाँ, उस स्थिति में भी जब यहावे दाविद के सारा शत्रुओं का अस्तित्व धरती पर से मिटा देंगे। तब योनातन ने यह कहते हुए दाविद के परिवार से वाचा स्थापित की, यहावे दाविद के शत्रुओं से प्रतिशोध ले। एक बार फिर योनातन ने दाविद के साथ शपथ ली, क्योंकि दाविद उन्हें बहुत ही प्रिय थे। वस्तुतः योनातन को दाविद अपने ही प्राणों के समान प्रिय थे। योनातन ने उनसे कहा, कल नवचंद्र उत्सव है और तुम्हारा आसन रिक्त रहेगा, तब सभी के सामने तुम्हारी अनुपस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। परसों शीघ्र ही उस स्थान पर पत्थरों के ढेर के पीछे छिप जाना जहां तुम पहले भी छिपे थे। तुम वहीं ठहरे रहना, मैं इस ढेर के निकट तीन बाण छोड़ूंगा, मानो मैं किसी लक्ष्य पर तीर छोड़ रहा हूं। जब मैं लड़के को उन बाणों के पीछे भेजूंगा, मैं कहूंगा, जाकर बाण खोज लाओ। और तब यदि मैं लड़के से कहूं, वह देखो बाण तुम्हारे इसी ओर है, ले आओ उन्हें, तब तुम यहां लौट आना, क्योंकि जीवंत यहावे की शपथ, तुम्हारे लिए कोई जोखिम ना होगा और तुम पूर्णतः सुरक्षित हो। मगर यदि मैं लड़के से यह कहूं, सुनो, बाण तुम्हारे दूसरी ओर है, तब तुम्हें भागना होगा, क्योंकि यहावे ने तुम्हें दूर भेजना चाहा है। जिस विषय पर हम दोनों के बीच चर्चा हुई है, उसका सदा सर्वदा के लिए यहावे हमारे गवाह है। तब दाविद जाकर मैदान में छिप गए। नवचंद्र उत्सव के मौके पर राजा भोज के लिए तैयार हुए। राजा अपने निर्धारित स्थान पर बैठे थे, जो दीवार के निकट था। योनातन का स्थान उनके ठीक सामने था। सेनापति अब्नेर शाऊल के निकट बैठे थे। दाविद का आसन खाली था। शाऊल ने इस विषय में कोई प्रश्न नहीं किया, इस विचार में उसके साथ अवश्य कुछ हो गया है। वह सांस्कारिक रूप से आज अशुद्ध होगा। हाँ, वह अशुद्ध ही होगा। मगर जब दूसरे दिन भी, नवचंद्र दिवस के दूसरे दिन भी, दाविद का आसन रिक्त ही था, शाऊल ने योनातन से पूछा, क्या कारण है यशे का पुत्र ना तो कल भोजन पर आया, ना ही आज भी? योनातन ने शाऊल को उत्तर दिया, दाविद ने एक बहुत ही आवश्यक काम के लिए मुझसे बेथलेम जाने की अनुमति ली है। उसने विनती की, मुझे जाने की अनुमति दो, क्योंकि हम अपने गृहनगर में बलि अर्पण कर रहे हैं, और मेरे भाई ने आग्रह किया है कि मैं वहां आ जाऊं, तब यदि मुझ पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है, मुझे मेरे भाइयों से भेंट करने की अनुमति दीजिए। इसलिए आज वह इस भोज में शामिल नहीं हो सका है। यह सुनते ही योनातन पर शाऊल का क्रोध भड़क उठा। वह कहने लगे, भ्रष्ट और विद्रोही स्त्री की संतान, क्या मैं समझ नहीं रहा कि तूने अपनी लज्जा तथा अपनी माँ की लज्जा के लिए यशे का पुत्र का पक्ष ले रहा है? यह समझ ले कि जब तक इस पृथ्वी पर यशे का पुत्र जीवित है, तब तक ना तो तू और ना तेरा राज्य प्रतिष्ठित हो सकेगा। अब जा और उसे यहाँ लेकर आ, क्योंकि उसकी मृत्यु निश्चित है। योनातन ने अपने पिता शाऊल से प्रश्न किया, क्यों है उसकी मृत्यु निश्चित? क्या किया है उसने ऐसा? यह सुनते ही शाऊल ने भाला फेंककर योनातन को घात करना चाहा। अब योनातन को यह निश्चय हो गया कि उसके पिता दाविद की हत्या के लिए दृढ़ संकल्प किया है। क्रोध से अभिभूत योनातन भोजन छोड़ उठ गए। नवचंद्र के दूसरे दिन भी उन्होंने भोजन ना किया, क्योंकि वह अपने पिता के व्यवहार से लज्जित था, दाविद के लिए शोकाकुल थे। प्रातःकाल योनातन एक लड़के को लेकर दाविद से भेंट करने मैदान में नियमित स्थान पर पहुंचे। उन्होंने उस लड़के को आदेश दिया, दौड़कर उन बाणों को खोज लाओ जो मैं छोड़ने पर हूं। जैसे ही लड़के ने दौड़ना शुरू किया, योनातन ने एक बाण उसके आगे लक्ष्य करते हुए छोड़ दिया। जब वह लड़का उस स्थल के निकट पहुंचा, योनातन ने पुकारते हुए उससे कहा, क्या वह बाण तुमसे आगे नहीं गिरा है? योनातन ने फिर पुकारा, जल्दी करो, दौड़ो, विलंब ना करो। लड़का बाण उठाकर अपने स्वामी के पास लौट आया। यह सब क्या हो रहा था, इसका उस लड़के को लेश मात्र भी पता नहीं था। रहस्य सिर्फ दाविद और योनातन के मध्य सीमित था। इसके बाद योनातन ने अपने शस्त्र उस लड़के को इस आदेश के साथ सौंप दिए, इन्हें लेकर नगर लौट जाओ। तब वह लड़का वहां से चला गया। दाविद ने पत्थरों के उस ढेर के पीछे से उठकर योनातन को नमन किया। तब दोनों एक दूसरे का चुंबन करते हुए रोते रहे। दाविद अधिक रो रहे थे। योनातन ने दाविद से कहा, तुम यहां से शांतिपूर्वक विदा हो जाओ, क्योंकि हमने यहावे के नाम में यह वाचा बांधी है, मेरे और तुम्हारे बीच तथा मेरे तथा तुम्हारे वंशजों के मध्य यहावे हमेशा के गवाह हैं। तब दाविद वहां से चले गए और योनातन अपने घर लौट गए।